खुदावन खुदा जो था जो है जो आने वाला है उसके पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। नहमिया जो खुदा का बंदा जो खुदावन से डरता अपने लोगों की फिक्र रखता था और दुआ हो और अपने दिल में ईमानदारों के लिए गम रखने वाला बंदा था और उसकी जिंदगी का बयान हमें पहले ही बाप में मिलता है कि जब वो उन लोगों से जो यहूदा के तरफ से आए थे उनसे पूछता है कि उन यहूदियों का क्या हुआ जो बाबल जो असीरी में ले गए थे जिनको असीर कर लिया था गुलाम बना लिया था जिनको कैदी करके ले गए थे उनके क्या हालात हैं शहर से और शहर के हालात और उसमें क्या हो रहा है। तो नहमिया जब उन लोगों से पूछता है जो चंद आदमी यहूदा से आए थे तो चौथी आयत में कहता है जब उनसे ये बातें सुनता है जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। यहाँ पर पुराने अहदनामा के उस बंदे को देखते हैं जो पदैश से खुदावन खुदा के कलाम को सुनता आया है और अब वो अपने लोगों की हालत देखकर जब के शहर तबाह है लोग मुसीबत में हैं जिल्लत में हैं उनके हालात बुरे हैं तो उसने कुछ और नहीं सोचा। सबसे पहले क्या किया है कि वो सुनकर बैठकर रोने लगा और इससे उसके दिल की हालत का हमें अंदाजा होता है कि वो दिल में अपने लोगों के लिए दर्द रखता है, वो दिल में अपने लोगों के लिए तरस रखता है, वो दिल में अपने लोगों के लिए इस बात का एहसास रखता है कि उसके लोग हमें भी जब कभी भी जहां कहीं भी मसीही ईमानदारों पर दुख आता है तो हमें अपने दिलों में ऐसा एहसास ऐसा गम पैदा करने की या रखने की जरूरत है। ये गम तब ही रखेंगे जब हम समझेंगे कि वो कलीसिया का बेटी बेटा मसीह का बदन और हम सब क्या हैं एक खानदान है। तब ही ये दर्द तब ही ये एहसास होगा जैसे कि नहमिया की जिंदगी में था। वो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा। यहां पर लफ्ज मातम का हम पुराने नामा में देखते हैं कि मातम के कई तरीके थे। एक मातम हम देखते हैं एलिया के सामने बाल के पुजारी मातम करते थे। वो छुरियों से अपने आप को उन्होंने काटना शुरू कर दिया कि शायद उनका देवता उनकी आवाज सुने, लेकिन उनके देवता ने उनकी आवाज ना सुनी। एक वो मातम है, एक आज हमारे दौर में किया जाता है जो महरमों में किया जाता है, लेकिन यहां पर जो खुदा का बंदा नहमिया कहता है कि वो कई दिनों तक मातम करता रहा तो ये मातम अलग है। ये मातम बहुत दफा बाइबल मुकद्दस में नजर आता है, टाट ओढ़ना, खाक पर बैठ जाना, राख सल में डालना और खामोशी में और बहुत दफा रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर खुदावन खुदा को और उसके रहम को पुकारना। इसलिए पहले वो रोता रहा और उसके बाद उसने मातम किया और तीसरी बात और रोजा रखा। यहां पर वो कहता है कि उसने रोजा रखा किसके लिए, अपने कौम के लिए। उसने मातम किया अपनी कौम के लिए कि उनकी हालत क्या है, वो नहायत मुसीबत में और जिल्लत में पड़े हैं और यरूशलम की दीवार और फाटक टूटे हुए और जले हुए हैं। आज हम भी इस बात से हमारे फाटक तो नहीं टूटे, हमारी बस्ती तो नहीं जली, हमारे लोग जिल्लत तो उठाते हैं। हम बहुत दफा नाचीज जाने जाते हैं, लेकिन रूहानी तबार से हमारे कलीसियाई नौजवान जो फाटकों की मानद कह सकते हैं या उस दीवार की मानद हैं, वो कमजोर हैं। वो उस कांपती हुई दीवार की मानद हैं कि कभी भी किसी वक्त भी वो गिर सकते हैं। क्यों? रूहानी तौर पर बेदारी नहीं। रूहानी तौर पर लोग ज्यादा वक्त पसंद करते हैं कुकड़ों के खेल में, ज्यादा वक्त पसंद करते हैं लूडो और ताश के पत्तों में। लोग ज्यादा वक्त किस बात में पसंद करते हैं? अगर कोई वक्त मिले तो दूसरी बातों में, सवाए के दुआ करें, सवाए के खुदा का कलाम पढ़ें, या फिर लोगों ने अपने आप को इतना मसरूफ कर लिया है अपने कारोबार में कि खुदा के लिए वक्त ही नहीं है। इसलिए हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि जैसे उनके फाटक, उनकी फसील, उनके शहर की दीवारें टूटी हुई हैं, शहर वीरान और बंजर है। रूहानी एतबार से हम भी अपने इर्द गिर्द गौर करें कि अगर रियाजत, अगर इबादत, अगर कोई चीज नजर आती है तो वो वक्ती तौर पर जैसे उस पथरीली जमीन की तरह है। बीज बोया जाता है, उगता है, लेकिन जड़ नहीं पकड़ता। इसलिए नहमिया की जिंदगी में चार बातें हैं। वो उसके लिए, अपने लोगों के लिए दर्द है, और उस दर्द का इजहार मातम और रोजा की हालत में वो करता है, और कहता है, और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। तो नौजवान आज खुदा उन खुदा ढूंढता है कि ऐसे नौजवान हो जो अपने कलीसिया के लिए, घरानों के लिए, कौम के लिए दर्द रखें। तो खुदावंद ऐसे नौजवानों की तलाश में है कि नहमिया की तरह दर्द रखने वाले और खुदावंद के हजूर दुआ करने वाले लोग हों, कि खुदा के हजूर दुआ की और फिर अपने कौम के गुनाह का क्या करता है? इकरार करता है। जैसे मूसा अपने लोगों की शिफायत करता था, आज हम भी अपने कौम के लिए शिफायत कर सकते हैं। तो ये नहमिया था। मेरे साथ देखें आस्तर की जिंदगी। आस्तर के बारे में कि खुदा खुदा से सरफराज करता है, वो एक घराने से बादशाह की बीवी बनती है, मलका बन जाती है। और फिर क्या होता है, जब हम चौथे बाब को देखते हैं तो बादशाह की तरफ से ये हुक्म है कि जितने यहूदी हैं उन सब को कत्ल किया जाए, उन सब का महाज किया जाए, उन सब को दुख पहुंचाया जाए। तो नहमिया के बाद आपको आस्तर की किताब मिलेगी, उसका चार बाब। आस्तर चार बाब, उसकी 3 आयत में हमें जिक्र मिलता है, लेकिन पहली आयत से पढ़ेंगे। जब मटकी को सब वो सब जो किया गया था मालूम हुआ, तो मर्दगी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहना, और सर पर राख डालकर शहर के बीच चला गया, और बुलंद और पुरदार आवाज से चिल्लाने लगा। ये है पुराने अहदनामे का मातम, कि उसने अपने कपड़े फाड़े। यहूदी लोग जब कपड़े पहनते थे, जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं, उनके कपड़ों के ऊपर एक, जिसे कहते हैं लबादा या चोला, जिसे कह सकते हैं, वो होता था, जिसे कह सकते हैं कि वो पहनते थे। और यहाँ पर जब कपड़े फाड़ने का जिक्र है, तो बहुत दफा लोग कहते हैं कि क्या उसने कपड़े फाड़ कर अपने आप को नंगा कर लिया? नहीं, उसके ऊपर जो चोला, या जिसे कह सकते हैं कि पोशाक पहनी हुई थी, उस पोशाक को वो फाड़ते। और ये इस बात का इशारा था, इस बात की तरफ ध्यान था कि उनको बहुत रंज है, बहुत दुख है, बहुत उनको मायूसी हुई है। और अपने कपड़े फाड़े और टाट पहनकर और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया, और बुलंद और पुरदर्द पुरदर्द हमें नहीं पता कि उसकी कैसी आवाज थी, लेकिन पुरदर्द आवाज से चिल्लाने लगा। जैसे अंदाजा लगा सकते हैं, जब किसी का कोई अजीज किसी से रूठ जाता है, इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो वो दर्द की हालत में ऐसा रोता है कि हर एक की तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है कि ये बंदी ये बंदा दुख में है। तो इस बंदे ने ये किया, मर्दकी ने ये किया, और वो बादशाह के फाटक के सामने भी आया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाना जाने ना पाता था। और तीसरी आयत, और हर सूबा में जहां कहीं, हर सूबे में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोजा और गिरियाजारी और नोहा शुरू हो गया, और बथेरे टाट पहने राख पर पड़ गए। तो यहां पर हमें यहूदी दुख का मतलब पता चलता है कि उन्होंने रोजा रखा, उन्होंने टाट ओढ़ा, उन्होंने राख पर बैठकर नोहा किया। याद ना, नोहे हम सुनते हैं बहुत दफा, जब महरम आते हैं तो नोहा किया जाता है। सो बाइबल मुकद्दस जब नोहे के बारे में कहती है तो ये गाकर बहुत दफा रो धोकर किया जाता था, जिसे कहते हैं कि पीटना। एक रो धोकर पीटा जाता था, एक अपने सर पर और दूसरा खाक और राख पर बैठकर। तो नहमिया अपनी कौम के लिए करता है दुआ, रोजा और खुदा के हजूर रोता है। आस्तर भी अपने तख्त पर है, मलका की हैसियत है, लेकिन वो अपने लोगों को नहीं भूली। लेकिन आज बहुत दफा ऐसा ही होता है कि बंदा लाहौर भी चले गए ना, तो लाहौर जाके भी भूल जाता अपने। इसलिए हमें, हम जहां कहीं भी रहें, अपने लोगों को और यीशु मसीह को कभी भी ना भूलें। अगर आज हम रोजा की हालत में हैं, तो हमें इस दौर के कलीसिया दौर के मुताबिक राख पर बैठने की जरूरत नहीं, टाट ओढ़ने की जरूरत नहीं, चौक में जाकर चलाने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह कहता है, जब तुम रोजा रखो, मुंह धो और सर में तेल डालो, ताकि कोई भी तुमको रोजादार ना जाने। अगर तुम रोजा रखते हो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बाप जो पशीदगी में देखता है, वो तुम्हें रोजादार जानकर तुम्हारे अजर दे। तो ये तमाम मिसालें, ये तमाम वाकयात हमारे लिए सीखने के लिए लिखे गए हैं कि हम सीखें और जिंदगी के इस भेद को जानें। अब बहुत दफा लोगों से कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस हमारे लिए लिखी गई है, हमको लिखी नहीं गई। तो वो कहते हैं कि इसका क्या मतलब है पादरी साहब? हमारे लिए लिखी गई यानी कि हम दाऊद की जिंदगी से सीख सकें, हमारे लिए लिखी गई कि हम नहमिया की जिंदगी से सीख सकें, हमारे लिए लिखी गई कि हम आस्तर की जिंदगी से उसके दिल का जायजा लगा सकें कि उस औरत का कैसा दिल था अपनी कौम और अपने कबीले के लिए। ऐसा दिल कि उसने कह दिया कि मैं अपनी कौम के लिए कुर्बान होने के लिए भी तैयार हूं। ऐसा दिल के नहमिया भी बादशाह का साकी है, उसे जाम पेश करता है, हर चीज जो इससे पहले बादशाह खाए वो खुद चखता है, उसकी बहुत चंगी नौकरी है। बादशाह के हजूर होना और उसका करीबी मुलाजम होकर उसके दिल में अपने लोगों के लिए क्या है, दर्द है और उनके लिए एहसास और दुआ की बहुत ही ज्यादा उसके लिए क्या है, मोहब्बत है। दोनों लोगों को हम देखते हैं, अगर आज के लोगों को देख लें बहुत दफा मसीही, अगर कोई किसी बड़े ओहदे पर है तो वो बुलाना किसी को पसंद नहीं करता। और इससे हम उस बंदे और बंदी की दिल की हालत का जायजा ले सकते हैं कि वो कितनी मोहब्बत खुदा के लोगों से करता है खुदा से करता है और कितनी हद तक वो दुआ भी करता होगा। तो बाइबल मुकद्दस हम सब के लिए लिखी गई है कि इससे अपने आप को जाने पहचाने, अपनी पड़ताल करें, अपने आप के बारे में समझें कि हमें किस तरह दुरुस्त राह पर जाना है। सो हमारे लिए लिखी गई है, हमको नहीं लिखी गई। अगर हमको लिखी जाती तो फिर कहा जाता कि आरवाला की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का खत, इसलिए उनको ये करना होगा। तो हम सब ईर्ष्यों के खत में से, गलतियों के खत में से, जो कलीसिया को लिखे गए उस कलीसिया में से हम कलीसिया होते हुए सीखते हैं। इसलिए हमें बहनों, हमें आस्तर की तरह खुदावन के हजूर अपनी कौम के लिए दर्द रखने की जरूरत है। नौजवानों, हम सबको नहमिया की तरह अपने दिल में अपनी कौम के लिए दर्द और मोहब्बत रखने की जरूरत है। दोनों शख्सियत, वो बादशाह का साकी है, वो मलका है। आप मुस्तकबिल में किसी ना किसी बड़े मकाम पर जाएंगे अगर खुदावन खुदा की मर्जी है। अगर आपके दिल के इरादे दुरुस्त है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं पासवान बनूं, मैं आर्मी में जाऊं, या मैं पायलट बनूं, या मैं टीचर बनूं, या मैं वकील बनूं, इस ओहदों पर जाकर भी अपने कौम को और अपने लोगों को ना भूलें, क्योंकि बहुत ज्यादा बरकत का बायस होंगे। इसलिए जब हम रोजा रखें तो कोई भी ना जाने, बल्कि वो हमारे और खुदा के दरमियान हो, तब उसका अजर बहुत बड़ा होगा। खुदावंद आपको इन दोनों ईमानदारों की एक वसीला से, नहमिया, आस्तर और यसुमसी के इस बयान के वसीला से बरकत दे। आमीन।